अन्वय ने उसे कमरे में छोड़कर स्वयं बाथरूम में चला गया। आन्या वहीं खामोश खड़ी रही। कुछ देर बाद अन्वय नहाकर लोअर और टी शर्ट पहनकर बाहर आया और बालों को तौलिए से पहुँचते हुए ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ते हुए बोला, जाओ जाकर नहा लो। उसकी हमेशा वाली सख्त रौबदार आवाज़ आन्या के कानों में पड़ी, जैसे उसे आदेश दे रहा हो। आन्या खामोशी से अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अन्वय की शर्ट उतारकर शावर के नीचे खड़ी हो गई और पलकें बंद की। आंखों से झरझर आंसू बह चले। अन्वय की बात उसके दिल में शीशे की तरह चुभ रही थी। पहले ही वो दुखी थी, अब और भी मायूस हो गई थी। उसने अपनी हथेली से आंसू साफ कर लिए। एक बार फिर उसने खुद को संभाला था। टूटकर बिखरना उसने सीखा ही नहीं था। कुछ देर बाद अपने बालों को तौलिए में लपेटकर वो बाथरूम से बाहर आई और दीवार और चीज़ों का सहारा लेते हुए बेड के पास आकर उस पर बैठ गई। उसने अपने पैरों को ऊपर करके देखा तो पैरों में नीचे छाले और चोट लगी हुई थी। उसने अन्वय की तरफ एक नज़र तक नहीं देखा, पर सोफे पर बैठे अन्वय की निगाहें आन्या पर टिकी हुई थीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसलिए ये बताना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आन्या ने अपने पैर देखे, फिर पैर नीचे करके झुककर टेबल के दराज से मेडिकल बॉक्स निकाला, कॉटन लेकर उस पर डेटॉल लगाया और पैर ऊपर करके उसे साफ करने के लिए हाथ उसकी ओर बढ़ाया, पर फिर पीछे खींच लिया। उसने दो तीन बार ऐसा ही किया। जलन होगी, ये सोचकर वो हाथ आगे बढ़ाते बढ़ाते उसे वापस पीछे खींच ले रही थी। एक बार फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया, पर इस बार हाथ पीछे खींचने से पहले ही किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। आन्या ने सर उठाकर देखा, सामने अन्वय बैठा हुआ था। अन्वय ने नज़रें उठाकर उसे देखा तक नहीं और उसके हाथ से कॉटन लेकर उसके पैर के जख्मों को साफ करने लगा। जलन महसूस करते ही आन्या ने उसकी बाह पकड़ ली। अन्वय ने दूसरे हाथ से उसके हाथ को हटा दिया। फूंक मारते हुए उसके दोनों पैरों के जख्मों को साफ करके दवाई लगाई, फिर उसकी कलाई जिस पर विजय के उंगलियों के निशान अब भी बने हुए थे उस पर क्रीम लगा दिया, फिर उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। आन्या एकटक उसे देखने लगी, पर अन्वय का ध्यान अपने काम पर था। उसने उसके सर पर लगी चोट को साफ किया और दवाई लगाकर बैंडेड लगा दिया। अब जाकर उसने आन्या की नज़रों से निगाहें मिलाईं। आन्या ने झट से पलके झुका ली। अन्वय ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके दाई कंधे से दुपट्टा नीचे सरका दिया। आन्या ने चौंक कर दुपट्टा ठीक करते हुए घबराकर उसे देखा। अन्वय को वो पल याद आ गया जब उसने आन्या को देखा था। दाई साइड से उसके सूट का कंधा थोड़ा फटा हुआ था और स्किन पर नाखूनों के निशान बने हुए थे। वो एरिया एकदम लाल हो रखा था, खून भी रिस रहा था। शायद किसी चीज़ से चोट लगी थी उसे वहाँ। अन्वय ने उसकी घबराई निगाहें देखी तो आराम से बोला, चोट लगी है तुम्हारे कंधे पर, खुद ठीक हो जाएगी। आन्या ने घबराकर वहां से उठना चाहा, पर अन्वय ने उसे उठने नहीं दिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, इतना घबराने की जरूरत नहीं है मुझसे, मैं लगा देता हूं दवाई। नहीं, मुझे नहीं लगवानी, आन्या ने साफ इनकार कर दिया। अन्वय कुछ कहना चाहता था कि आन्या उसकी बात काटकर बोली, भले ही तुम हर लड़की के साथ ऐसे ही रहते होगे, सबके लिए यही सब करते होगे, पर मैं हर किसी को खुद को छूने या अपने करीब आने का हक नहीं दे सकती। तुम ही कहते हो कि कोई रिश्ता नहीं हमारा, तो किस हक से ये सब कर रहे हो? अगर अजनबी बनकर कर रहे हो तो इस अजनबी का बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब और एहसान नहीं ले सकती मैं उसका। मैं नहीं चाहती तुम मुझे वैसे देखो, वो हक नहीं है तुम्हारे पास। उसने अब चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, पर अन्वय पीछे नहीं हटा। उसने उसके दुपट्टे को एक बार फिर नीचे सरका दिया। आन्या ने उसे रोकना चाहा, पर जैसे ही निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी उसके हाथ रुक गए। अन्वय ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं, पर बंद आंखों में भी वो अपने सामने बैठी आन्या को देख पा रहा था, पर आन्या इससे अनजान थी। वो एक बार फिर उसे एकटक देखने लगी। अन्वय ने उसके सूट के कंधे को नीचे सरका दिया। आन्या का दिल धड़कने लगा, सांसें तेज चलने लगी। अन्वय एकदम सहज था। उसने उसके जख्म को साफ करके उस पर दवाई लगा दी, पर कंधे को नीचे ही रहने दिया और दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोला, कुछ देर यूं ही रहने दो और आराम करो, मैं खाना बना देता हूँ, खाकर दवाई ले लेना, दर्द से आराम मिलेगा। उसने जाने के लिए एक कदम बढ़ाया ही था कि आन्या ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ऐसे मतलब कैसे बिहेव कर रहा हूँ मैं? अन्वय ने उसकी ओर पीट किए हुए बदले में सवाल किया। आन्या ने आगे कहा, एक तरफ तुम मुझे कहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और दूसरी तरफ मेरी इतनी केयर करते हो। तुम्हारे अलावा कोई मेरी इतनी केयर नहीं करता, फिर भी तुम मुझे बाकी सब लड़कियों में शामिल कर देते हो, और तुम्हारी ये बात पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत चुभती है। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? आन्या के सवाल ने अन्वय को खामोश कर दिया था। कुछ पल के लिए वो खामोश खड़ा रहा, फिर उसके हाथ को अपनी कलाई पर से हटाते हुए बोला, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैंने सच ही कहा है, तुम मेरे लिए बाकी लड़कियों की तरह ही हो।